नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, बिल्डिंग इवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर गवर्नेंस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर एक व्यावहारिक वैचारिक पुस्तक है। इसका मुख्य विषय ऐसे सिस्टम बनाना है जो बदलती व्यावसायिक जरूरतों, तकनीकों और परिचालन परिस्थितियों के साथ सुरक्षित ढंग से बदल सके। पुस्तक आर्किटेक्चर को एक बार तैयार होने वाले स्थिर नक्शे के बजाय निरंतर विकसित होने वाली व्यवस्था के रूप में देखती है। लेखक इवॉल्वेबिलिटी अर्थात परिवर्तन को संभालने की क्षमता को प्रदर्शन, सुरक्षा और विश्वसनीयता जैसी महत्वपूर्ण आर्किटेक्चरल विशेषता मानते हैं। इसका केंद्रीय विचार है कि परिवर्तन क्रमिक हो, स्पष्ट दिशा में हो और स्वचालित जांचों द्वारा नियंत्रित हो। इस उद्देश्य के लिए पुस्तक आर्किटेक्चरल फिटनेस फंक्शंस की अवधारणा प्रस्तुत करती है, जो कोड, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, मॉनिटरिंग और परीक्षणों के माध्यम से महत्वपूर्ण गुणों की लगातार पुष्टि करते हैं। यह दूसरा संस्करण ऑटोमेटेड गवर्नेंस पर अधिक केंद्रित है। इसमें कपलिंग, डेटा परिवर्तन, आर्किटेक्चरल शैलियों और इंक्रीमेंटल बदलाव की इंजीनियरिंग को एक साझा ढांचे में रखा गया है। पुस्तक का लक्ष्य किसी एक तकनीक का नुस्खा देना नहीं, बल्कि परिवर्तनशील सिस्टमों के लिए अनुशासित निर्णय प्रक्रिया देना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, इवॉल्वेबिलिटी को आर्किटेक्चर की प्राथमिक गुणवत्ता मानना। पुस्तक की आधारभूत दलील यह है कि सफल आर्किटेक्चर का मूल्य केवल उसके आरंभिक डिजाइन से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह भविष्य के परिवर्तन कितनी विश्वसनीयता से स्वीकार कर सकता है। व्यवसाय की प्राथमिकताएं, ग्राहक अपेक्षाएं, नियामक नियम, टीम संरचना और तकनीकी मंच लगातार बदलते हैं, इसलिए किसी दूरस्थ भविष्य का पूर्ण अनुमान लगाकर स्थायी डिजाइन बना देना व्यावहारिक लक्ष्य नहीं है। पुस्तक इवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करती है जो अनेक आयामों में निर्देशित क्रमिक परिवर्तन का समर्थन करे। अनेक आयामों का अर्थ केवल कोड संरचना नहीं है, इनमें प्रदर्शन, सुरक्षा, स्केलेबिलिटी, उपलब्धता, डेटा डिप्लॉयमेंट और टीमों के बीच जिम्मेदारियों की सीमाएं भी शामिल हो सकती है। निर्देशित परिवर्तन का अर्थ है कि बदलाव अराजक न हो, बल्कि चुनी हुई गुणवत्ता सीमाओं के भीतर हो। क्रमिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े एकमुश्त पुनर्लेखन लंबे समय तक जोखिम, अनिश्चितता और समानांतर रखरखाव बढ़ाते हैं। छोटे बदलाव अनुमान की जांच करने, असफल दिशा को जल्दी रोकने और उपयोगी दिशा को आगे बढ़ाने देते हैं। पुस्तक इस दृष्टि से आर्किटेक्ट की भूमिका को भी बदलती है। आर्किटेक्ट केवल प्रारंभिक संरचना चुनने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वह ऐसी सीमाएं, प्रतिक्रिया तंत्र और डिलीवरी प्रक्रियाएं बनाता है जिनसे सिस्टम समय के साथ अपनी आवश्यक विशेषताएं बनाए रखे। दूसरा, फिटनेस फंक्शन से गुणवत्ता गुणों को मापने योग्य बनाना। फिटनेस फंक्शन पुस्तक की सबसे विशिष्ट अवधारणा है। यह कोई एक विशेष परीक्षण उपकरण नहीं, बल्कि किसी आर्किटेक्चरल विशेषता की निरंतर जांच करने वाला उद्देश्यपूर्ण तंत्र है। पारंपरिक आवश्यकताओं में प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए या सिस्टम सुरक्षित होना चाहिए, जैसे कथन अक्सर अस्पष्ट रह जाते हैं। फिटनेस फंक्शन ऐसे कथन को मापने योग्य नियम में बदलता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण सेवा की प्रतिक्रिया अवधि निर्धारित सीमा के भीतर रहे या कोई निषिद्ध मॉड्यूल निर्भरता उत्पन्न न हो। यह जांच यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिक्योरिटी स्कैन, लोड टेस्ट, डिप्लॉयमेंट सत्यापन, लॉग विश्लेषण या उत्पादन मॉनिटरिंग के रूप में लागू हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम स्वचालित हो और बार बार चल सके। इससे आर्किटेक्चरल निर्णय दस्तावेज में दबे हुए इरादे नहीं रहते, बल्कि डिलीवरी प्रक्रिया में लागू होने वाले मानदंड बनते हैं। पुस्तक फिटनेस फंक्शंस को ऑटोमेटेड गवर्नेंस का आधार मानती है। जब कोई बदलाव निर्धारित गुणों को नुकसान पहुंचाता है, तो टीम को बाद में महंगी जांच पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि पाइपलाइन या निगरानी तुरंत संकेत दे सकती है। फिर भी पुस्तक का विचार यह नहीं कि हर गुणवत्ता को सरल संख्या में घटाया जा सकता है। टीम को पहले महत्वपूर्ण आयाम चुनने, स्वीकार्य सीमा तय करने और बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार नियमों को संशोधित करने का विवेक रखना होता है। तीसरा, ऑटोमेटेड गवर्नेंस द्वारा आर्किटेक्चरल क्षरण को रोकना। पुस्तक गवर्नेंस को केवल अनुमोदन बैठकों, दस्तावेज समीक्षा या केंद्रीय आर्किटेक्चर समिति से जोड़कर नहीं देखती। उसका प्रस्ताव है कि जहां संभव हो, आर्किटेक्चरल नीतियों को स्वचालित जांचों में बदला जाए। इससे नियमों का पालन व्यक्ति की स्मृति, अनुभव या अंतिम क्षण की समीक्षा पर कम निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी सिस्टम में कुछ परतों के बीच सीधे संपर्क की अनुमति नहीं है, तो निर्भरता विश्लेषण उस नियम के उल्लंघन को पकड़ सकता है। यदि सेवाओं के बीच अनुचित निर्भरता बढ़ रही है, तो टीम कपलिंग को मापने वाले संकेतकों और सीमाओं का उपयोग कर सकती है। इस प्रकार गवर्नेंस विकास की गति रोकने वाला बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि डिलीवरी के भीतर बना हुआ फीडबैक तंत्र बन जाता है। यह दृष्टिकोण खासकर उन संगठनों में उपयोगी है जहां कई टीमें एक ही प्लेटफॉर्म या उत्पाद पर काम करती है और स्थानीय सुविधा धीरे धीरे वैश्विक जटिलता पैदा कर सकती है। स्वचालन हर निर्णय का विकल्प नहीं है। किसी नियम की व्यापारिक प्रासंगिकता, सही सीमा और अपवादों पर मानवीय निर्णय आवश्यक रहता है, लेकिन दोहराए जा सकने वाले नियमों को स्वचालित करने से विशेषज्ञों का समय अधिक जटिल निर्णयों के लिए बचता है। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि आर्किटेक्चरल इरादों को लागू करने योग्य जांचों में व्यक्त किए बिना सिस्टम में धीरे धीरे होने वाले क्षरण को रोकना कठिन है। चौथा, इंक्रीमेंटल परिवर्तन पैटर्न से बड़े बदलाव का जोखिम घटाना। इवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर में लक्ष्य संरचना चुन लेना पर्याप्त नहीं है। उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौजूदा सिस्टम से वहां तक कैसे पहुंचा जाए। पुस्तक इस समस्या के लिए इंक्रीमेंटल चेंज इंजीनियरिंग पर जोर देती है। ब्रांच बाय एब्स्ट्रैक्शन जैसे पैटर्न में पुराने और नए कार्यान्वयन के ऊपर एक अमूर्तन परत रखी जाती है ताकि उपभोक्ता को तुरंत बदलना ना पड़े। पैरेलल चेंज में नए डेटा प्रारूप, इंटरफेस या व्यवहार को पहले संगत रूप में जोड़ा जाता है, फिर उपयोगकर्ताओं को धीरे धीरे स्थानांतरित किया जाता है और अंत में पुराना भाग हटाया जाता है। फीचर टॉगल्स किसी नई क्षमता को डिप्लॉय करने और उसे नियंत्रित ढंग से सक्रिय करने में सहायता कर सकते हैं। इन तरीकों का उद्देश्य केवल तकनीकी सुंदरता नहीं है, वे परिवर्तन को छोटे, परीक्षण योग्य और वापस किए जा सकने वाले चरणों में बांटते हैं। इससे टीम उत्पादन में वास्तविक व्यवहार देखकर निर्णय सुधार सकती है और लंबे समय तक अलग शाखाओं में काम करने से बच सकती है। पुस्तक यह भी संकेत देती है कि हर अस्थायी पुल को हटाने की योजना जरूरी है। पुराने और नए रास्तों को अनिश्चित समय तक साथ रखने से जटिलता बढ़ती है। इसलिए क्रमिक परिवर्तन के साथ स्पष्ट संक्रमण मानदंड, स्वचालित परीक्षण, डिप्लॉयमेंट अनुशासन और तकनीकी ऋण हटाने की जिम्मेदारी भी चाहिए। यही संयोजन बड़े बदलाव को कम विघटनकारी बनाता है। अंत में डेटा कपलिंग और आर्किटेक्चरल शैली को परिवर्तन क्षमता से जोड़ना। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि परिवर्तन क्षमता केवल एप्लीकेशन कोड की समस्या नहीं है। डेटाबेस स्कीमा, सेवा सीमाएं, साझा लाइब्रेरी, डिप्लॉयमेंट टोपोलॉजी और आर्किटेक्चरल शैली सभी परिवर्तन की लागत और जोखिम तय करते हैं। डेटा के मामले में स्कीमा परिवर्तन अक्सर कठिन होते हैं क्योंकि पुराने और नए एप्लीकेशन संस्करण कुछ समय तक साथ चल सकते हैं। इसलिए पीछे की ओर संगत परिवर्तन, माइग्रेशन कोड और चरणबद्ध डेटा संक्रमण उपयोगी सिद्धांत है। डेटाबेस बदलावों को भी एप्लीकेशन बदलावों की तरह संस्करण नियंत्रित और स्वचालित प्रक्रिया का हिस्सा मानने से पता लगाने योग्य इतिहास तथा दोहराने योग्य डिप्लॉयमेंट मिलते हैं। कपलिंग के संदर्भ में पुस्तक यह नहीं कहती कि हर निर्भरता बुरी है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या निर्भरता परिवर्तन को अनावश्यक रूप से फैलाती है और क्या उसकी दिशा तथा मात्रा समझी जा सकती है। अत्यधिक साझा संरचनाएं स्थानीय बदलाव को व्यापक समन्वय में बदल देती है। इसी कारण पुस्तक शैली चयन में फैशन के बजाय आवश्यक परिवर्तन पैटर्न को महत्व देती है। माइक्रोसर्विसेज, इवेंट ड्रिवन या अन्य शैलियां अपने आप इवोल्यूशनरी नहीं बन जाती। उनकी उपयोगिता डोमेन सीमाओं, संचालन क्षमता, डेटा स्वामित्व और टीम की डिलीवरी परिपक्वता पर निर्भर है। इस दृष्टि से पुस्तक पुनः उपयोग के आदर्श से अधिक प्रतिस्थापनीयता और स्पष्ट सीमाओं पर ध्यान दिलाती है। सही संरचना वह है जो वास्तविक बदलावों को स्वीकार करे, न कि केवल आरेख में आधुनिक दिखे। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, वरिष्ठ डेवलपर्स, टेक्निकल लीड्स और प्लेटफॉर्म टीमों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो लंबे समय तक चलने वाले सिस्टमों में परिवर्तन की लागत कम करना चाहते हैं। यह उन पाठकों के लिए कम उपयुक्त हो सकती है जो किसी एक फ्रेमवर्क, क्लाउड सेवा या तैयार माइक्रोसर्विसेज रेसिपी की तलाश में है। पुस्तक का लाभ उसके निर्णय ढांचे में है। पाठक गुणवत्ता गुणों को पहचानने, उन्हें फिटनेस फंक्शंस के रूप में व्यक्त करने, डिलीवरी पाइपलाइन में जांचें जोड़ने और बड़े बदलावों को छोटे संक्रमणों में बांटने का स्पष्ट तरीका पाता है। इससे आर्किटेक्चर पर चर्चा पसंदीदा शैली या व्यक्तिगत राय से आगे बढ़कर मापने योग्य सीमाओं और स्वीकार्य जोखिम पर केंद्रित हो सकती है। समान विषय की कई पुस्तकों में आर्किटेक्चरल पैटर्न, वितरित सिस्टम या संगठनात्मक प्रक्रियाओं को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। बिल्डिंग इवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर्स की अलग पहचान यह है कि यह इन विषयों को समय के आयाम से जोड़ती है। यह पूछती है कि चुनी हुई संरचना कल के परिवर्तन के सामने कैसे व्यवहार करेगी और उस व्यवहार को लगातार कैसे सत्यापित किया जाएगा। ऑटोमेटेड गवर्नेंस पर इसका जोर भी इसे केवल सिद्धांत आधारित आर्किटेक्चर चर्चा से अलग करता है। पुस्तक मानती है कि पूर्ण भविष्यवाणी संभव नहीं है। परंतु नियंत्रित प्रयोग, छोटे रिलीज चक्र, स्वचालन और सतत प्रतिक्रिया से अनिश्चितता को संभाला जा सकता है। इसलिए इसका स्थायी योगदान किसी अंतिम आर्किटेक्चर का दावा नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर को जीवित, जांच योग्य और बदलने योग्य बनाए रखने की व्यावहारिक सोच है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं नील फोर्ट, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।